एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है, सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज हम जिसकी बात करने वाले हैं उनका नाम शायद दुनिया में सबसे ज्यादा जाना जाता है, विलियम शेक्सपियर।
हाँ बिल्कुल, शेक्सपियर। लेकिन आज हम उनकी कहानियों या कविताओं में ही नहीं खोएंगे,
हाँ,
बल्कि कोशिश करेंगे उस इंसान को समझने की जो इन सबके पीछे था। और इसमें हमारी मदद करेंगे सर स्टैनली वेल्स।
अच्छा, स्टैनली वेल्स, ये तो बहुत बड़ा नाम है शेक्सपियर स्टडीज में।
हाँ बहुत बड़ा, वो शेक्सपियर की दुनिया के आप कह सकते हैं सबसे बड़े जानकारों में से एक है। और उनका नजरिया थोड़ा अलग है, वो शेक्सपियर को कोई देवता नहीं मानते।
अच्छा, तो फिर कैसे देखते हैं वो?
वो उन्हें देखते हैं अपने जमाने के एक कामयाब, एक प्रोफेशनल इंसान की तरह।
और ये नजरिया आज समझना क्यों जरूरी है? मतलब शेक्सपियर तो शेक्सपियर है।
जरूरी इसलिए है क्योंकि शेक्सपियर आज भी आप देखिए हमारी भाषा पर, हमारी सोच पर, कहानियों पर हर जगह छाए हुए हैं। वेल्स हमें उन मिथकों से, उन कहानियों से परे ले जाते हैं।
मतलब असली शेक्सपियर से मिलवाते हैं
जी,
जो स्ट्रैटफोर्ड से निकलकर लंदन के थिएटर तक पहुंचा।
बिल्कुल। तो चलिए आज वेल्स की नजरों से देखते हैं इस महान लेखक को।
ठीक है, तो सबसे पहले जरा सर स्टैनली वेल्स के बारे में ही बात कर लें, कौन है ये?
हाँ, तो जैसा आपने कहा, शेक्सपियर की दुनिया में इनका नाम बहुत बड़ा है। लगभग सोचिए 60 साल से वो इसी विषय पर काम कर रहे हैं।
अरे वाह, 60 साल!
जी, वो शेक्सपियर के जन्म स्थान स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में शेक्सपियर बर्थ प्लेस ट्रस्ट के मानद अध्यक्ष रहे हैं। बर्मिंगम यूनिवर्सिटी में सालों पढ़ाया, अब प्रोफेसर एमेरिटस हैं और जो मशहूर शेक्सपियर इंस्टीट्यूट है उसके डायरेक्टर भी रह चुके हैं।
लेकिन सुना है वो सिर्फ अकेडमी की नहीं है, मतलब सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं।
सही कहा, उन्होंने ऑक्सफर्ड शेक्सपियर एडिशन को एडिट किया है जो शेक्सपियर के नाटकों का एक बहुत ही सम्मानित संग्रह माना जाता है।
हाँ वो तो है।
और उनकी खासियत यही है कि वो गहरी रिसर्च को थिएटर की असल दुनिया से जोड़ती हैं। वो मानती हैं कि शेक्सपियर के नाटक सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं थे,
वो खेलने के लिए लिखे गए थे, स्टेज के लिए।
बिल्कुल, इसीलिए उनका नजरिया अनोखा है। वो दशकों की मुश्किल पढ़ाई को आम लोगों के लिए आसान और दिलचस्प बना देती हैं। उनका मकसद है शेक्सपियर से जुड़ी गलतफहमियां दूर करना।
जैसे ये कि वो कोई रहस्यमयी आदमी थे या शायद थे ही नहीं, वो ऑथरशिप वाली बहस।
हाँ, वो सब वेल्स सबूतों पर जोर देती हैं। वो एक असली कामकाजी लेखक की तस्वीर पेश करती हैं।
तो फिर स्टैनली वेल्स का मुख्य तर्क क्या है, उनका मेन पॉइंट क्या है शेक्सपियर के बारे में?
वेल्स का सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हमें शेक्सपियर को ऐसे नहीं देखना चाहिए कि वो अकेले बैठे थे और कोई दैवीय प्रेरणा आई और लिख दिया।
अच्छा।
बल्कि हमें उन्हें लंदन थिएटर की जो हलचल भरी दुनिया थी उसका एक हिस्सा समझना चाहिए, एक होशियार, प्रैक्टिकल और हाँ, महत्वाकांक्षी प्रोफेशनल।
मतलब वो अपने समय, समाज और थिएटर की जरूरतों के हिसाब से लिख रहे थे।
बिल्कुल, वो हवा में नहीं लिख रहे थे। वेल जोर देती हैं कि शेक्सपियर अपने जमाने के माहौल में सामाजिक, व्यापारिक, कलात्मक पूरी तरह रचे बसे थे।
एक कारीगर की तरह जो अपनी कला को उस समय के हिसाब से ढाल रहा था।
हाँ, एक कारीगर, एक बिजनेसमैन भी। वो ग्लोब थिएटर में हिस्सेदार थे, एक साथी थे जो एक्टर्स के साथ मिलके काम करते थे और सबसे बढ़कर एक एंटरटेनर थे। उनकी रचनाएं उनके समय की मांग और संभावनाओं की देन थीं।
तो वेल्स दरअसल दो बड़े सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं ना।
पहला,
हाँ,
सबूतों के आधार पर असली विलियम शेक्सपियर कौन था।
हाँ।
और दूसरा, 400 साल बाद भी उनके नाटकों में इतनी ताकत और अपील क्यों है।
और उनका जवाब है, शेक्सपियर की कामयाबी का राज उनकी भाषा पर पकड़, इंसान के स्वभाव की गहरी समझ और उनके नाटकों का लचीलापन।
लचीलापन मतलब? मतलब ये नाटक इतने फ्लेक्सिबल हैं कि हर पीढ़ी, हर जमाना उनमें अपने मतलब ढूंढ लेता है। वेल्स उस शेक्सपियर पूजा या बार्डोलोट्री को खारिज करती हैं जो असली इंसान को छुपा देती है।
अच्छा।
और एक कामकाजी नाटककार की उस अविश्वसनीय उपलब्धि का सम्मान करती हैं जिसने थिएटर की दुनिया में रहकर अपनी कला को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया।
चलिए अब कहानी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। वेल्स हमें सबसे पहले शेक्सपियर की जड़ों तक ले जाते हैं, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, जन्म 1564 में।
हाँ, उनके पिता जॉन शेक्सपियर दस्ताने बनाते थे और शहर के मतलब सम्मानित नागरिक थे, मेयर जैसे पद पर भी रहे। माँ मैरी आर्डन वो भी अच्छे परिवार से थी, तो परिवार की इज्जत थी शहर में।
और पढ़ाई लिखाई क्या पता इसके बारे में?
देखिए, पक्का तो कुछ नहीं पता, पर वेल्स मानती हैं कि वो शायद लोकल ग्रामर स्कूल गए होंगे और वो स्कूल मामूली नहीं थे।
अच्छा।
वहाँ लैटिन भाषा, पुराने रोमन लेखक जैसे ओविड और रेटोरिक यानी बोलने की कला, भाषण कला सिखाई जाती थी, और शायद यही ट्रेनिंग उनके लेखन का आधार बनी, वो भाषा पर पकड़, वो दमदार डायलॉग।
फिर आते हैं वो खोए हुए साल, स्कूल छोड़ने और लंदन में अचानक एक लेखक के तौर पर उभरने के बीच का वक्त। कई किस्से हैं इस बारे में।
हाँ, बहुत किस्से हैं, कि वो सैनिक थे या टीचर या किसी नाटक मंडली के साथ भाग गए थे। वेल्स इन रोमांटिक कहानियों पर ज्यादा यकीन नहीं करती।
तो वेल्स क्या मानती हैं?
वो कहती हैं शायद वो टीचर रहे हों या किसी घूमती फिरती नाटक मंडली से जुड़ गए हों, जिससे उन्हें थिएटर का क्या कहते हैं चस्का लगा हो।
और इसी दौरान शादी भी हुई उनकी।
हाँ, 18 की उम्र में एन हैथवे से, जो उनसे थोड़ी बड़ी थी। 3 बच्चे हुए। वेल्स के लिए ये बैकग्राउंड जरूरी है।
क्यों?
ये दिखाता है कि शेक्सपियर के पास छोटे शहर के अनुभव भी थे और लंदन जाकर नाम कमाने की चाहत भी। वो सिर्फ लंदन के नहीं थे, उनके नाटकों में आपको गांव देहात की झलक भी मिलती है।
ठीक है, तो स्ट्रैटफोर्ड ने नींव रखी, लेकिन असली कहानी तो लंदन के मंच पर शुरू हुई। वेल्स बताती हैं कि 1590 के दशक तक शेक्सपियर लंदन आ चुके थे और जमने लगे थे, एक्टर और नाटककार दोनों तौर पर।
और वो लंदन के थिएटर का बड़ा ही रोमांचक दौर था। पहली बार खास नाटक खेलने के लिए थिएटर बन रहे थे,
जैसे दो थिएटर, द कर्टन।
हाँ, और सबसे मशहूर द ग्लोब, जिसके शेक्सपियर खुद हिस्सेदार यानी पार्टनर बने। और सोचिए, ये आज के बंद थिएटर जैसे नहीं थे।
हाँ, खुले आसमान के नीचे, बीच में स्टेज दर्शकों तक घुसा हुआ, और शायद ज्यादा सेट वगैरह भी नहीं होते थे।
बिल्कुल, ज्यादा सेट वेट नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ?
मतलब स्टेज पर माहौल शब्दों से ही बनाना पड़ता होगा, एक्टर्स के डायलॉग से ही पता चलता होगा कि सीन महल में है या जंगल में।
एकदम सही, भाषा ही सब कुछ थी। शेक्सपियर की कलम का जादू यहीं दिखता है। और नाटक खेलती थी कंपनियां, जैसे लॉर्ड चेम्बरलिन मैन, जो बाद में किंग्स मैन बनी।
और ये सब पुरुषों की मंडलियां थी, है ना? औरतें तो स्टेज पर नहीं आती थी।
नहीं, लड़के ही औरतों के रोल करते थे। और ये सिर्फ कला नहीं थी, ये बिजनेस भी था। शेक्सपियर का शेयर होल्डर होना उनकी बिजनेस समझ दिखाता है।
विल्स एक और बात पर जोर देती हैं, सहयोग, टीम वर्क, कि शेक्सपियर अकेले नहीं लिख रहे थे।
हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। वो अपनी कंपनी के एक्टर्स को ध्यान में रखकर लिख रहे थे। उन्हें पता था कि रिचर्ड बर्बिज जैसा दमदार एक्टर है तो उसके लिए हैमलेट या ओथेलो जैसा रोल लिखा जा सकता है,
या अगर विल कैंप जैसा मस्खरा है तो उसके लिए मजेदार रोल लिखने हैं।
बिल्कुल, नाटक मिलकर बनते थे, टीम का काम था।
और दर्शक, वो भी हर तरह के थे, नीचे खड़े आम लोग भी और ऊपर गैलरी में पढ़े लिखे अमीर लोग भी।
हाँ, नीचे खड़े होके देखने वाले आम लोग, जिन्हें ग्राउंडलिंग्स कहते थे, से लेकर ऊपर गैलरियों में बैठे पढ़े लिखे अमीर लोग। तो शेक्सपियर को ऐसा लिखना पड़ता था जो सबको पसंद आए,
मतलब उसमें एक्शन भी हो, मजाक भी हो, गहरी फिलॉसफी भी हो और शानदार कविता भी,
सब कुछ एक साथ।
हाँ, शायद यही मल्टी लेवल अपील उनकी कामयाबी का बड़ा राज थी। दिलचस्प बात यह है कि नाटक लिखने से पहले शेक्सपियर कवि के रूप में मशहूर हुए, खासतौर जब प्लेग की वजह से थिएटर बंद थे।
हाँ, ये बात कई लोग नहीं जानते। उन्होंने लंबी कविताएं लिखी, जैसे वीनस एंड एडोनिस और द रेप ऑफ ल्यूक्रेस। ये उस जमाने की बेस्ट सेलर थी।
बेस्ट सेलर? अच्छा।
हाँ, उन्होंने ये कविताएं एक अमीर सरपरस्त अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को समर्पित की। इनमें प्यार, सुंदरता, वासना जैसे विषय थे और भाषा बहुत सजी संवरी, परिष्कृत थी।
फिर आते हैं उनके सोनेट, वो 14 लाइनों वाली छोटी कविताएं, 154 सोनेट्स का संग्रह।
हाँ, जो 1609 में छपा, शायद उनकी इजाजत के बिना। इनमें प्यार, वक्त का गुजरना, सुंदरता, दोस्ती, धोखा, बहुत गहरे विषय हैं।
और वो रहस्यमयी किरदार भी, एक गोरा नौजवान, एक सांवली महिला, एक दुश्मन शायर, लोग आज तक अंदाजा लगा रहे हैं कि ये कौन थे।
बिल्कुल, लेकिन वेल्स कहती हैं सावधान, इन्हें सीधे सीधे शेक्सपियर की डायरी मत समझिए।
अच्छा।
हो सकता है ये सिर्फ प्यार और रिश्तों के अलग अलग रूपों को दिखाने का एक साहित्यिक तरीका हो। जरूरी नहीं कि ये सब सच में उनकी जिंदगी में हुआ हो, वो एक कलात्मक रचना भी हो सकती है।
खैर, कविताओं से आगे बढ़कर आते हैं उनके नाटकों पर, जो उनकी असली पहचान है। वेल्स उन्हें समझने के लिए जॉनर यानी शैली के हिसाब से देखती हैं, जैसे कॉमेडीज।
हाँ, शेक्सपियर की कॉमेडीज वो सिर्फ हंसी मजाक और हैप्पी एंडिंग वाली नहीं होती, उनमें अक्सर पहचान की अदला बदली होती है ना।
हाँ बिल्कुल, और हीराइनें बहुत स्मार्ट और मजेदार होती हैं, जैसे एज यू लाइक इट की रोजेलिंड।
बिल्कुल,
और वो नाटक प्यार, समाज और इंसानी बेवकूफियों पर सवाल उठाते हैं।
वेल्स दिखाते हैं कि ये सब उस दौर के दर्शकों को लुभाने के लिए तो था, लेकिन उसमें गहरी बातें भी छुपी होती थी। उन्होंने इस जॉनर में भी काफी प्रयोग किए,
आसान कॉमेडी से शुरू करके बाद में प्रॉब्लम प्ले जैसे गंभीर नाटक भी लिखे।
हाँ, जिनमें नैतिक रूप से उलझे हुए सवाल होते थे, है इतिहास नैतिक, जैसे रिचर्ड थर्ड या हेनरी फिफ्थ। यो जमाने में बड़े हिट थे, इंग्लैंड में देशभक्ति का माहौल था।
हाँ, लेकिन वेल्स कहती हैं ये सच्ची हिस्ट्री नहीं है, ये पावर, लीडरशिप की जिम्मेदारी और सियासत के खेल पर लिखे गए दमदार ड्रामा है।
और उन्होंने सर जॉन फॉल्स्टाफ जैसा एक कमाल का किरदार भी रचा, वो मोटा, शराबी, डरपोक लेकिन मजेदार नाइट।
हाँ, फॉल्स्टाफ, वो दिखाता है कि शेक्सपियर कितने जटिल और मानवीय किरदार बना सकते थे।
अब फिर आती है त्रासदियां, यानी ट्रेजेडीज। हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, ये शायद उनके सबसे मशहूर और गहरे काम हैं।
हाँ, वेल्स बताती हैं कि इनमें ऊंचे पद वाला हीरो अक्सर अपनी किसी कमी या गलती, जिसे यूनानी भाषा में हमर्टिया कहते हैं।
हमर्टिया?
अच्छा।
हाँ,
मतलब किरदार की कोई ऐसी कमी या गलती जो उसके पतन का कारण बनती है, और बाहरी हालात के कारण वो बर्बाद हो जाता है।
लेकिन ये सिर्फ दुख भरी कहानियां नहीं है, है ना?
बिल्कुल नहीं। वेल्स के मुताबिक ये नाटक जिंदगी, मौत, नैतिकता, दुख और दुनिया के मतलब जैसे बड़े सवालों से जूझते हैं।
हैमलेट का शक, ओथेलो की जलन, लियर का दर्द, मैकबेथ का लालच, ये सब तो आज भी बहुत रिलेटेबल लगता है।
बिल्कुल, ये इंसानी फितरत की वो बातें हैं जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती हैं।
और आखिर में उन्होंने कुछ अलग तरह के नाटक लिखे जिन्हें रोमांस कहा जाता है, जैसे द टेम्पेस्ट या द विंटर्स टेल।
हाँ, इनमें शैली का एक अनूठा मिश्रण है। दुख, बिछड़ने और धोखे से कहानी शुरू होती है, लेकिन अंत में जादू, माफी और सुलह होती है।
इनमें कल्पना और उम्मीद का रंग ज्यादा गहरा है। द टेम्पेस्ट को तो कई लोग शेक्सपियर का स्टेज से फेयरवेल मानते हैं।
हाँ, ऐसा माना जाता है। तो इस पूरी चर्चा से वेल्स के नजरिए से मुख्य बातें क्या निकलती हैं, अगर हमें कुछ पॉइंट्स याद रखने हो तो?
मेरे ख्याल से सबसे पहली और जरूरी बात, शेक्सपियर एक प्रैक्टिकल प्रोफेशनल थे। वो सिर्फ कला के लिए कला नहीं बना रहे थे, बल्कि थिएटर की दुनिया में सफल होने के लिए लिख रहे थे।
हाँ, वो अपने दर्शकों, एक्टरों और बिजनेस की जरूरतों को समझते थे। दूसरी बात, भाषा के जादूगर।
अरे हाँ, अंग्रेजी भाषा के साथ उन्होंने कमाल के प्रयोग किए, उनकी वोकैबुलरी बहुत बड़ी थी।
और वो ऐसी भाषा लिखते थे जो खूबसूरत भी हो, किरदारों के मन की बात भी कहे और स्टेज पर असरदार भी हो।
तीसरी, इंसान को समझना। उनके नाटक हर दौर के इंसानों की भावनाओं को दिखाते हैं। प्यार, नफरत, जलन, लालच, दया, बदला, सब कुछ है।
और उनके किरदार इतने असली लगते हैं कि हम आज भी उनसे जुड़ पाते हैं। चौथी बात, हमेशा कुछ नया करने की चाह। वो एक ही ढर्रे पर नहीं चले।
सही कहा, कॉमेडी, इतिहास, ट्रेजेडी, रोमांस, हर जॉनर में उन्होंने कुछ नया किया, सीमाओं को तोड़ा, वो लगातार प्रयोग कर रहे थे।
और पांचवी, जो वेल्स बार बार याद दिलाती हैं, नाटक खेलने के लिए होते हैं, ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, ये स्टेज पर जान डालने वाले स्क्रिप्ट हैं।
उनका असली मजा थिएटर में ही है।
हाँ, और ये भी कि उन्हें उनके जमाने के संदर्भ में समझना जरूरी है। वो अपने समय की राजनीति, समाज और थिएटर से प्रभावित थे, और आखिर में उनकी विरासत स्थिर नहीं, जिंदा है।
मतलब हर पीढ़ी उन्हें नए सिरे से देखती है, नए मतलब निकालती है।
बिल्कुल, यही उनकी महानता का एक और सबूत है।
ये सब सुनकर लगता है कि महान कला अक्सर बहुत जमीनी हकीकतों और जरूरतों से भी जन्म लेती है। ये सिर्फ शेक्सपियर ही नहीं, आज की कला, फिल्म, संगीत को समझने में भी मदद करता है।
वेल्स के कुछ खास विचार उनके नजरिए को और साफ करते हैं। जैसे एक बात वो कहती हैं।
हाँ, वो कहते हैं कि शेक्सपियर की कहानी हमें रोमांटिक किस्सों या अंदाजों पर नहीं, बल्कि जो थोड़े बहुत पुख्ता सबूत हैं उन पर बनानी चाहिए। और ये सबूत दिखाते हैं कि वो एक महत्वाकांक्षी, समझदार और प्रैक्टिकल इंसान थे।
बिल्कुल, ये उन्हें एक असली इंसान बनाता है, कोई पहेली नहीं। एक और अहम बात, कागज पर छपा नाटक तो सिर्फ एक नक्शा है, असली नाटक थिएटर में जिंदा होता है, एक्टर, शब्द और दर्शक के बीच।
ये नाटक को किताब से निकालकर स्टेज की दुनिया से जोड़ता है।
और ये भी, शेक्सपियर की प्रतिभा किसी रहस्यमय देन में नहीं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया से सीखने, चाहे वो किताबें हों या सड़क की भाषा, और उसे ऐसी कला में बदलने की क्षमता में थी जो सबको छू सके।
मतलब टैलेंट मेहनत और हुनर से आता है।
हाँ, और आखिर में जो लोग कहते हैं कि शेक्सपियर ने अपने नाटक नहीं लिखे, उनके लिए वेल्स का जवाब सीधा है।
क्या कहती हैं वो इस बारे में?
वो कहती हैं ये शक सिर्फ इसलिए है कि कुछ लोग मान नहीं पाते कि एक आम बैकग्राउंड का आदमी इतना महान लेखक कैसे हो सकता है, जबकि सबूत स्ट्रैटफोर्ड वाले विलियम शेक्सपियर के पक्ष में ही है।
ये बातें साफ करती हैं कि वेल्स हमें शेक्सपियर को पूजने के बजाय समझने के लिए कह रही हैं, सबूतों के साथ।
अब सवाल ये कि ये सब जानने का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या फायदा? 400 साल पुराने नाटककार के बारे में जानना क्यों जरूरी है?
हाँ, ये अच्छा सवाल है।
वेल्स के नजरिए से देखें तो इसके कई फायदे हैं। पहला तो यही कि हमारी भाषा और कल्चर को बेहतर समझना।
हाँ, हम रोजमर्रा में कितने ही शेक्सपियर के मुहावरे इस्तेमाल करते हैं बिना जाने, जैसे ब्रेक द आइस या वाइल्ड गूस चेस।
बिल्कुल, उनकी कहानियों के रेफरेंस फिल्मों, गानों, बातों में आते रहते हैं। दूसरा, लोगों को बेहतर समझना, सहानुभूति बढ़ना।
कैसे?
जब हम हैमलेट की उलझन या मैकबेथ के लालच या रोजालिंड की चतुराई को समझने की कोशिश करते हैं तो हम इंसानी स्वभाव की जटिलताओं को बेहतर समझ पाते हैं। ये हमें अपने आसपास के लोगों और खुद को समझने में मदद करता है।
तीसरा, क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक सोच का विकास, जिस तरह वेल्स सबूतों और अटकलों में फर्क करती हैं।
हाँ, वो हमें सिखाता है कि किसी भी जानकारी पर आंख मूंद कर यकीन ना करें, सवाल पूछें, पूर्वाग्रह पहचानें। आज की फेक न्यूज वाली दुनिया में ये बहुत जरूरी हुनर है।
चौथा, कहानी कहने की कला की कदर करना, ये समझना कि शेक्सपियर ने कैसे प्लॉट बुने, कैसे किरदार गढ़े, अपने माहौल से पैदा होती है। वेल्स दिखाती हैं कि कैसे थिएटर के बिजनेस, दर्शकों की पसंद, राजनीतिक माहौल ने शेक्सपियर के काम को शक्ल दी।
इससे हम आज की कला को भी उसके संदर्भ में देख सकते हैं, और शायद सबसे बड़ी बात, जिंदगी की जटिलताओं को स्वीकार करना।
मतलब
शेक्सपियर के नाटक आसान जवाब नहीं देते। क्या हैमलेट सही है या गलत, शाइलॉक विलन है या विक्टिम? वेल्स हमें सिखाती हैं कि जिंदगी हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, और इस ग्रे एरिया को समझना ही शायद ज्यादा जरूरी है।
तो स्टैनली वेल्स के नजरिए से इस पूरी बातचीत का सार क्या निकला? मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि शेक्सपियर कोई मिथक नहीं बल्कि एक असली हुनरमंद प्रोफेशनल थे, जिनकी महानता उनके समय और माहौल से जुड़ी थी। वो हवा में नहीं, जमीन पर खड़े होकर लिख रहे थे।
हाँ बिल्कुल, वेल्स हमें उस डरावने देवता जैसे शेक्सपियर की छवि से निकालकर एक ज्यादा दिलचस्प और भरोसेमंद तस्वीर दिखाती हैं। एक टैलेंटेड थिएटर वाला जिसने कॉम्पिटिशन और बिजनेस के बीच रहकर अपनी कला को निखारा। वो जीनियस थे, लेकिन एक कामकाजी जीनियस।
वेल्स हमें शेक्सपियर को सही मायने में समझने का औजार देती हैं, तथ्य, इतिहास का संदर्भ और विश्लेषण, ताकि हम अटकलों से हटकर उनके काम का आनंद ले सकें।
और जाते जाते एक सोचने वाली बात छोड़ जाती हैं। वेल्स दिखाती हैं कि शेक्सपियर ने अपने जमाने के मीडिया यानी स्टेज और अपनी भाषा पर महारत हासिल की।
हाँ,
सोचिए अगर आज वैसा ही कोई टैलेंटेड इंसान होता तो वो हमारे इस डिजिटल सोशल मीडिया एआई वाले जमाने में क्या कर रहा होता, वो किस तरह अपनी बात कहता।
ये तो सोचने वाली बात है, शायद कोई कमाल का फिल्म डायरेक्टर होता या कोई वायरल कॉन्टेंट क्रिएटर,
या शायद कुछ ऐसा जो हमने अभी सोचा भी ना हो।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए इकट्ठा फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।